ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तथा त्यक्त सर्वासाः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया। विज्ञायाखिल दृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः तास्तथा त्यक्त सर्वासाः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया। विज्ञायाखिल दृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः ताः वे विप्रपत्नियाँ तथा उक्त प्रकार से त्यक्त सर्वासः समस्त मनोरथों को त्याग चुके थे। प्राप्त है और अनेक प्रतिबंधकों को लांघती हुई निकट आई थी। आत्मदिदृक्षया अपने को मुझको देखने की लालसा से इस बात को विज्ञाय जानकर अखिल दृग्दृष्टा सबके बुद्धि वृत्तियों के साक्षी श्री भगवान प्राह बोले, प्रहसिता हंसते हुए, आननः मुख सबके मनोवृत्ति के साक्षी दृष्टा भगवान ने जान लिया कि ये विप्र पत्नियां मुझे देखने की लालसा से आई हैं, इनके भीतर और कोई मनोरथ नहीं है। अन्य संसारी स्वजनों से पूर्ण होने वाली आशाएं मनोरथ सब छोड़ चुकी थी, उनका त्याग करके आई थी, बल्कि वे रोक रहे थे पर उनका तिरस्कार करके आ गई थी। आत्मदिदृक्षया मुझको देखने की लालसा से इस बात को जानकर, उनके हृदय की गति को भाव को जानकर भगवान हंसते हुए बोले। भगवान हंस रहे हैं कि उनको ब्राह्मण पत्नियों के आने से कोई उद्वेग नहीं है, प्रसन्नता है। तो श्री भगवान इस प्रकार बोलते हैं, सावधानी से कथा सुननी चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम। हे महाभाग्यवती ब्रजांगनाओं, ब्राह्मण पत्नियों, सबसे पहले विप्र पत्नियों को महाभाग्यवती कह रहे हैं। महाभाग्य है, इस प्रकार से सांसारिक बंधनों को तोड़कर भगवान को देखने की लालसा और प्रयास हो तो यह महान भाग्यवान का लक्षण है। तुम लोग महाभाग्यवती हो, स्वागतम, तुम्हारा यहां आना बहुत अच्छा है। भगवान ने विप्र पत्नियों के भाव का अनुमोदन कर रहे हैं। डांटा नहीं कि यहां क्यों आ गई, अपने परिवार में जाओ, सेवा करो, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। कहते हैं तुम्हारा बड़ा भाग्य है और तुम्हारा यहां आना बहुत अच्छा हुआ। स्वागतम, सुआगतम, बहुत अच्छा किया आया। आश्यताम, बैठिए। भगवान कहते हैं आसन लीजिए। आश्यता मतलब बैठिए, अर्थात कुछ विश्राम कीजिए। भोजन का भार लेकर आई हैं और तेज गति से आई हैं तो था प्रतिबंधन हो रहा था, रोकी जा रही थी। उन स्वजनों की हाथ छुड़ाने में, झटका देने में अनेक प्रकार से परिश्रम हुआ है। तो भगवान करुणा बस कह रहे हैं कि आश्यताम, आप क्षण विश्राम लेताम, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, बैठिए। सब खड़ी भगवान को देख रही थी अब तक। तो भगवान ने कहा कि आश्यताम, बैठिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं लोकोत्तर हैं, लोक से बिल्कुल भिन्न है। वो दूसरे की पत्नियां हैं और जागिक ब्राह्मण की पत्नी हैं, जो लोग यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में से भाग आना, प्रसाद भोजन लेकर के, तो यहां आने पर यदि भगवान भी दूर दूर जाने को कहते तो कितना बड़ा हृदय पर ठेस लगता है। भगवान कहते बैठिए बैठिए, ठीक है, आप आए, बहुत अच्छा हुआ, बैठिए। क्षणम विश्राम में ताम, यहां थोड़ी देर विश्राम कीजिए। और करवाम किम, बैठ करके आदिश्यताम, हमें आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। करवाम किम, हम क्या सेवा करें। भगवान बड़े प्रेम की भाषा बोल रहे हैं कि हम क्या सेवा करें, अर्थात आप किस अपेक्षा से आई हैं, आपका मैं कौन सा प्रिय करूं, आपके लिए क्या करूं। तो ब्राह्मण पत्नियां कुछ कह नहीं पाई, केवल देख रहे थे श्याम सुंदर को। भगवान उनके भाव को समझते थे कि हमें देखने आई हैं, मिलने आई हैं, हमसे इनकी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई धन वैभव ऐश्वर्य कुछ चाहती नहीं है। तो भगवान कहते हैं जन्नो दिल छया प्राप्त, हमें देखने आई हो, हमें बहुवचन में बोल रहे हैं कि न, हम लोगों को देखने आए हो, अपने भाव को भगवान भी छिपा रहे हैं, हम गोपों को देखने आई हैं आप। तो ठीक है, यह बहुत ही युक्त बात है, ठीक है, आप हमें देखने आई हैं, यह उत्पन्न है, उत्पन्न का अर्थ होता है युक्त, बिल्कुल ठीक, ठीक किया। तो इसी युक्तत्व को बता रहे हैं कि आपका यह कार्य उचित है, क्योंकि जितने भी विवेकी लोग हैं और अपने पुरुषार्थ को देखते हैं, अपने पुरुषार्थ को जानते हैं, वे सब मुझ में अहेतुकी और अखंड भक्ति करते हैं। तो आप जो हमें देखने आई, या कोई आश्चर्य नहीं है और यह ठीक किया, ये कोई गलती नहीं है। भगवान पूरा जानते हैं कि परिवार के लोगों से एक प्रकार से झगड़ा करके आई हैं। जब घर से चल रही थी तो पति या पिता ये सब क्रोध में कहते थे, ठीक है जाओ, लेकिन लौट कर मत आना, अब इस घर में मुख मत दिखाना। तो विप्र पत्नियों ने यहां तो कह दिया, हमें नहीं आना है, नहीं आना है, जहां भी जैसे भी जीना होगा जी, हम नहीं आएंगे। भगवान सब जानते हैं, कहते ठीक किया, हमको देखने आई यह उपपन्न बात है, युक्त बात है, क्योंकि जितने विवेकी लोग हैं ये अपने पुरुषार्थ को देखते हैं, स्वार्थ दर्शन स्वस्य अर्थम पुरुषार्थम पश्यन्ति ते, जो अपने पुरुषार्थ को वास्तविक लाभ को जानते हैं वे लोग मेरी भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करते हैं? नन्वद्धा मई कुर्वन्ति कुशला स्वार्थ दर्शन अहेतुकी अव्यवहिता भक्तिम आत्मप्रिय जथा। मुझमें अहेतु की भक्ति करते हैं, किसी हेतु से नहीं भक्ति करते हैं, मेरे अतिरिक्त और कोई वस्तु चाहते नहीं, और अव्यवहिता निरंतरा भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति जो कभी खंडित नहीं होती। तो जितने भी विवेकी लोग हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, पुरुषार्थदर्शी हैं, वे हमसे प्रेम करते हैं, हमारी भक्ति करते हैं और सदा करते हैं। भक्ति कभी खंडित नहीं होती है और भक्ति में कोई अन्य कामना नहीं होती है, बस भक्ति भक्ति के लिए करते हैं। तो आप जो हमारे पास आई हैं और मुझमें भक्ति कर रही हैं, यह बिल्कुल ठीक है, आपके इस भाव का स्वागत है। और श्री भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सबसे प्रिय वस्तु हूं समस्त जीवों के लिए, मेरे अतिरिक्त और कोई भी प्यारा नहीं है। प्राण बुद्धि मन स्वात्म दारा पत्य धनादय जत संपर्क प्रिया आसन ततः को न पर प्रिया। किसी व्यक्ति के पास जितनी भी वस्तुएं होती हैं, प्राण बुद्धि मान स्वजन देह संतान और धन आदि, ये सब मेरे संपर्क के कारण प्रिय लगते हैं। वास्तव में ये सब वस्तुएं इसलिए प्रिय लगती हैं कि आत्मा से इनका संपर्क होता है। दो तरह का संपर्क, एक अभ्यास और एक उपकरण। कुछ वस्तुएं हैं जैसे देह है, बुद्धि मन, इनमें आत्मा का अभ्यास होता है कि मैं ही यहां हूं, तो ये तो आत्मा की तरह प्रिय लगते हैं। पर ये देह प्राण मन क्यों प्रिय हैं? क्योंकि आत्मा से संपर्क, और आत्मा है क्या? आत्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है। तो आत्मा का प्रियत्व भी वास्तव में भगवान के प्रियत्व में परिवसित होता है, वही परम प्रिय। यदि शरीर में आत्मा न रहे तो इसे कोई प्रेम नहीं करता है। देह तब तक प्रिय है जब तक इसमें आत्मा और परमात्मा है। जिसमें जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है, निकल जाता है, तो उसी समय सभी लोग इसे मृतक कहते हैं। मृतक पुरुषते जथा, मृतक कहा जाता है। यद्यपि शरीर के सभी अंग ज्यों के त्यों रहते हैं, आंखें वैसी रहती हैं, कान भी रहता है, हाथ पैर सब, परंतु आत्मा के बिना सब शून्य हो जाते हैं। कोई किसी से प्रेम करता है पर जब आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाए तो उससे उसका प्रेम हट जाता है, देखा जाता है। उसी देह को व्यक्ति फिर कब्र में डाल देता है या चिता पर रख करके जलाकर भस्म कर देता है या कहीं फेंक देता है, कुत्ते गिद्ध वगैरह खा जाते हैं। तो देह प्रिय लग रहा था कब तक, जब तक आत्मा का संपर्क था। आत्मा से संपर्क हट जाता है तो यह देह मृतक कहा जाता है। तो आत्मा में यह प्रियता क्यों है, क्योंकि वह परम आत्मा का श्री कृष्ण का अंश है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान कहते हैं जितने जीव भूत हैं, जीव हैं, ये मेरे ही अंश हैं। तो अंततः श्री कृष्ण का संग ही सुख का कारण है और प्रियत्व का आधार है। अपना शरीर हो या दूसरे का शरीर हो, यह शरीर प्रिय लगता है कृष्ण के कारण। कृष्ण है इसमें, यह कृष्ण का अंश जीवात्मा है। तो भगवान यहां पर विप्र पत्नियों के भाव का पूर्ण अनुमोदन कर रहे हैं कि आपने जो भी किया, धर्म का उल्लंघन किया, स्वजनों का उल्लंघन किया और मेरे पास आई, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा है। यही विद्वान लोग करते हैं, आपने ठीक किया। मेरे अतिरिक्त कौन प्रिय हो सकता है। जत संपर्क प्रिय आसन ततः को न पर प्रिय, गिना रहे हैं भगवान के प्राण बुद्धि मन स्वजन देह, आत्मक अर्थ है देह और अपत्य पुत्र से संतान और धन आदि, धन घर कार धन सब, ये सब प्रिय क्यों लगते हैं, क्योंकि ये आत्मा के उपकरण है उसका, उसको सुख देने के लिए। धन क्यों प्रिय है, क्योंकि यह आत्मा का उपकरण है। उपकरण का मतलब होता है उसको सुख देने वाली कुछ वस्तुएं उसकी मान्यता के अनुसार, इसलिए धन प्रिय लगता है, घर प्रिय लगता है, कोई वस्तु प्रिय लगती है। जब ये विश्वास हो जाता है कि अब ये मेरे सेवा में नहीं रहेगी वस्तु, तो प्रियता हट जाती है। संतान आदि भी तभी तक प्रिय लगते हैं जब तक आत्मा के साथ संबंध। किसी को कोई पुत्र प्रिय है, पर इसीलिए न कि उसके देह में आत्मा है, परमात्मा का वास है। तो जीवात्मा के निकल जाने पर फिर उससे प्रेम निकल जाता है। तो जिसके संपर्क मात्र से ये सब वस्तुएं प्रिय लगती हैं, उस परम प्रिय श्री कृष्ण के अलावा और कौन प्रिय वस्तु? कोई नहीं। कोनु अपरह प्रिय, अपरह का अर्थ मुझसे भिन्न है, आत्मा से भिन्न वस्तु कौन प्रिय? न कोपी, कोई नहीं। तथा जात देव योजनम, इसलिए आप लोग जाइए, यज्ञ में लौट जाइए। इसलिए तद का अर्थ आपका जीवन कृतार्थ है, मेरी भक्ति से पूर्ण है, आप धन्य हैं, कृतार्थ हैं, इसलिए आप अपने पतियों को भी कृतार्थ कीजिए। आपके पति द्विजाति हैं, ब्राह्मण हैं, अच्छे लोग हैं और अच्छा कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थ के काम में पत्नी का सहयोग आवश्यक होता है। और चूंकि आप लोग हमारे मेरे भक्त हैं, तो जिस कर्म में भक्त का हाथ लग जाता है वो पूर्ण सफल माना जाता है। तो आपके पति सब द्विजाति हैं, ब्राह्मण हैं, आप लौट जाए जग में, स्वसत्रम पारयिष्यन्ति, आपके पति जन अपने यज्ञ को अच्छा से पूरा करेंगे, जिसमें भी आप लोग सहचर्य से आप लोग यज्ञ में रहेंगी तो उनका यज्ञ बहुत अच्छा से पूरा होगा, क्योंकि वे गृह में दी हैं, गृहस्थ हैं। जैसे लौट जाइए, भगवान की बातें अजीब होती हैं। आई बहुत अच्छा किया, चाहे झगड़ा करके आई, त्याग करके आई, जैसे आई आई बहुत अच्छा, लेकिन आप लौट जाइए। इसलिए कि जीवन धन्य है, आपका भक्ति कर रहे हैं, इसलिए लौट जाइए। तो आपके सहयोग से आपके पति स्वर्ग प्राप्त करेंगे, यज्ञ पूरा करेंगे, इसलिए लौट जाइए। देखिए भगवान कितने मर्यादा के रक्षक हैं। जैसे प्रकट लीला में भगवान एक गोप हैं, ग्वाले हैं, गाय के चरवाहे हैं, जाति की दृष्टि से वैश्य हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव जन, कृषि करना, खेती करना, व्यापार करना और गायों की रक्षा करना, ये वैश्य का स्वाभाविक काम है। स्वयं भगवान उपदेश किए हैं, जब जाति से गोप हैं तभी ब्राह्मणियों को कैसे अपना सकते थे? भले उनके पतियों ने तिरस्कार किया था कि जो कुछ भी किया था, और ये आई थी कृष्ण के पास, तो भगवान ने तो भाव का आने का स्वागत किया, परंतु लौकिक मर्यादा देख करके भगवान लौटने को भी कह रहे हैं। कोई यह न कलंक दे उन ब्राह्मण पत्नियों पर कि ये उल्टा हो गई, अपने पति को छोड़ करके गोप चरवाहे के पास चली गई। भगवान ये कलंक नहीं देना चाहते, वे मर्यादा के रक्षक हैं, लौटने को कहे। भगवान कई प्रकार से विचार किए थे। एक तो ये ब्राह्मणों की पत्नियां हैं और ब्राह्मण जन्म से ही सबके गुरु होते हैं, एक प्रकार से गुरु पत्नियां हैं और भोजन दात्री हैं, भोजन दिया है मां जैसे हैं। उनको स्वीकार करना लोक मर्यादा का उच्छेद करना था। भगवान सब समय ध्यान रखते हैं, वे इस वेद के स्वयं वक्ता हैं, वैदिक नियमों के आचार विचार के स्थापक हैं, तो वे इन नियमों को स्वयं कैसे तोड़ सकते हैं। फिर लौटा रहे हैं कि आप लौट जाइए, पतियों के साथ उनके यज्ञ में उनके कर्म में सहयोग दीजिए। तो इसके लिए भगवान इनको बुरा नहीं कह रहे हैं, जो कुछ किया अच्छा किया। यहां आना, मुझसे प्रेम करना, ये अच्छा है। तो भगवान ने जब लौटने के लिए कहा तो ब्राह्मण पत्नियां लौटना नहीं चाहती, वे श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को जानती थी कि ये भगवान हैं, ईश्वर हैं, सारे जगत के पालक हैं, हमारा पालन करना इनके लिए कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और वे हैं स्त्री, अगर 10-20 का 2-4 हजार स्त्रियां भी कृष्ण से कहें कि हमारा पालन करो, वो कर सकते हैं। वैसे प्रसिद्ध बात है कि 16 हजार का पालन तो करते ही है, 16 हजार स्त्रियों को उतना महल देना, गहना देना, कपड़ा देना, भोजन देना, ऐसे श्री कृष्ण का काम है। और वैसे सारे जगत को वही दे ही रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, वही माता है, वही पिता है, वही भाई है, बंधु है, सब कुछ है। विप्र पत्नियों ने मान लिया कि श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, हमारे सब कुछ है। अब हम इनके पास रहेंगे, भले हम गोपियों जैसा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती हैं, लेकिन हम जंगल में रहेंगी, इनको देख लेंगे, यही हमारा सुख होगा, और हम रहेंगे। इसकी तो चिंता हो नहीं रही थी कि हम कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण के साथ रहेंगे, ये सोची थी। पर भगवान बड़े सजग हैं, लौकिक मर्यादा के विरुद्ध कुछ कर नहीं सकते। जब भगवान ने लौटने के लिए कहा तो ब्राह्मण पत्नियों के यहां कुछ उद्गार दिए गए हैं, भगवान को जवाब दे रही हैं कि आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। और बात तो ठीक बोले, लेकिन आप लौटने के लिए बोले, ये गलत बोले। मैवम विभोर हते भवान गलतुम निशंसम सत्यम कुरु स्वनिगमम तवपाद मूलम। हम लोग आपके चरणों में आई हैं, तो आप अपने निगम को, अपने वचन को सत्य कीजिए। आपका वचन ऐसा है कि जो सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जाता है, फिर संसार में नहीं जाता है। तो आप अपने द्वारा कही हुई बात को सत्य कीजिए, और जो आपने कहा कि बहुत अच्छा किया यहां आई सुस्वागतम, तो फिर लौटा क्यों रहे हैं? जब हमने अच्छा किया हम आई, तो लौटना तो हमारे लिए बुरा है, हम लौट नहीं सकते। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है भगवान के पास आ जाना, चाहे लाख संकट सह करके जैसे तैसे। कभी कभी वृंदावन धाम में आने में भी कठिनाई होती है, और कठिनाई कोई सरकार नहीं देती है, परिवार के लोग देते हैं, सुविधा भी देते हैं और कभी कभी बहुत बाधा भी डालते हैं। और उसमें भी भागवत कथा में आने में तो प्रायः सब बाधा ही देते हैं। कभी कभी हमने सुना है कहते हुए कहते हैं कि अरे कथाएं तो रोज चलती रहेंगी, ये बाद में सुन लेना, अभी जाने की क्या जरूरत है। अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, वहां ये कष्ट है ये कष्ट है, कष्ट तो है लेकिन श्री कृष्ण के मिलन का सुख भी मिलता है। कथा में कृष्ण कथा कृष्ण का स्वरूप है, जैसा मैं कल कहा कि संसार के जो भी संबंध हैं भगवान ने बनाया है इसी इंड के लिए, इसी लक्ष्य के लिए, सभी स्वजन अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक अपने संबंधी को श्री कृष्ण के तरफ बढ़ने में सहायक होंगे, सहायता करेंगे। माँ सहायता करेगी, पिता सहायता करेंगे, भाई मामा चाचा जो भी हैं सब कृष्ण के तरफ बढ़ने में मदद करेंगे। इसी में संबंधियों की सार्थकता है, अन्यथा लौकिक के साथ पूरा करने में, जैसे मान लीजिए पैसा कमाने में, खाने में, सांसारिक निर्वाह करने में सहायक मात्र हों और कृष्ण की तरफ बढ़ने में सहायता न करें, तो ऐसे स्वजनों के त्याग की ही बात कही गई है शास्त्रों में। एक बार की बात है जब भगवान श्री राम अयोध्या से चित्रकूट चले गए पिता की बात को पूरा करने के लिए, तो भरत जी जब ननिहाल से आए, इन्हें यह सुनाया गया कि आपकी मां ने राजा दशरथ से दो वर मांगा, एक से आपको राज्य और दूसरे वर से राम को वनवास, तो राज्य आप लीजिए, राज कीजिए, आपके पिता ने दिया है आपको। कि भरत जी इसे बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि यदि मुझको राज दिया जाएगा, जिस दिन मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी, मोह ही राज हठ दई हूं जब ही रसा रसातल जाए ही, तब मैं ये पाप नहीं करूंगा, ये राज भगवान का है, वही राजा बनेंगे, मैं उनका सेवक हूं, मैं कभी स्वीकार नहीं करूं, और मेरे कारण राम को वनवास हुआ इसलिए मुझे बहुत दुख है, तो मैं सबसे पहले जाकर के उनको मना करके लाऊंगा कि वे राजगद्दी पर बैठे, राज उनका है, तो मैं निश्चय कर लिया कि हमें चित्रकूट जाना है भगवान को मनाने के लिए। जब भरत जी जाने के लिए तैयार हो गए, दिन निश्चित कर लिए, तब अयोध्या में समझन एक खबर फैल गई, सब लोग लगे कहने कि हम भी राम के पास जाएंगे, सब लोग तैयार हो गए। किसी किसी के सामने बाधा आ रही थी, घर के स्वजन वृद्ध और बच्चे और स्त्रियां आदि, ये बाधा होने लगे, भाई छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कैसे जाएंगे, या स्त्रियों को वृद्धों को और धन को छोड़ करके घर को कैसे जाएंगे। तो किसी बुद्धिमान वृद्ध अयोध्यावासी से लोगों ने कहा कि हम भी तो जाना चाहते हैं लेकिन कैसे जाएं। तो व्यक्ति ने सलाह दिया कि यदि घर बाधक हो रहा है, धन बाधक हो रहा है राम के पास जाने में, तो इनको फूंक दो, आग लगा दो, खत्म कर दो, रहेंगे, बाधा नहीं होगी। एक दोहा में कहा भी गया है, जरौ संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पित भाई सनमुख हो तो जो राम पद करे न साहस है। वह संपत्ति, वह गृह सुख और वह माँ, वह पिता, वह भाई बंधु सब जल जाए जो राम के सामने होने में सहर्ष सहायता नहीं करते, सब तरह से मदद नहीं करते। घर को अघोर कर रहने रहे आदमी और राम का दर्शन न करे तो घर की क्या जरूरत है। तो पेड़ के नीचे रहे आदमी तो उठकर चल देगा दर्शन कर, ममता नहीं होगी उसके बाद, दूसरा कोई आकर छाया में बैठे चाहे कोई। तो वह संपत्ति, वह सुख, वह घर, वह स्वजन जल जाए जो राम के पास जाने में हजारों तरह से सहर्ष सहायता नहीं करते। देखिए भगवान बिना कष्ट के नहीं मिलते हैं, और सबसे बड़ा कष्ट सहना होता है यह, इसमें स्वजनों की ममता का त्याग करना पड़ता है, निरपेक्ष होना पड़ता है। अंततः ब्राह्मण की पत्नियां जगत में यशस्वी ही रहीं, चूंकि भगवान के पास आई थी तो आज तक कोई भी व्यक्ति उनमें दोष दृष्टि नहीं करता। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गान भक्ति तेज हारा पाइला गोविंद चरण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि विप्र पत्नियों की जय हो, नाग कन्याओं की जय हो जिन्होंने भक्ति के बल से गोविंद का चरण कमल पाया। भक्ति ते जहारा पाइला गोविंद चरण, भगवान स्वागत कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो जीव के हर एक गति को समझते हैं, उसकी बाधाएं भी जानते हैं सब। वे प्रोत्साहन नहीं देंगे तो फिर जीव तो बहुत निराश हो जाएगा। भगवान सब तरह से प्रोत्साहन देते हैं, और केवल प्रोत्साहन ही नहीं देते हैं, सब तरह से मदद करते हैं उन लोगों की जो कृष्ण की तरफ बढ़ना चाहते हैं। भगवान ने तो यहां तक कहा है कि सभी लोग आदर करेंगे, तुम्हारे पति, सास, ससुर सभी, क्योंकि तुम मेरे पास आई हो ना, मेरे पास आने पर सब लोग आदर करते हैं, देवता भी आदर करते हैं। इस कथा को मैं कल कहूंगा विस्तार से। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग को जोड़िए तो लंबा हो जाएगा, और समय का ज्यादा उल्लंघन करने से फिर कितने भक्त हाहाकार करने लगते हैं भोजन के लिए, तो इसलिए भी ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। पर हमको तो और दुख है कि अगर हम कथा बढ़ाएंगे तो कहीं किसी के मुख से सांप न निकले कि इसका कंठ और खराब हो जाए तो अच्छा हो। वैसे ही तबीयत खराब है, तो मैं किसी भी वैष्णव को किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहता। तो मैं यहीं विराम देता हूं आज और आपको एक अवसर देता हूं, बीते हुए 3-4 दिन में जो प्रश्न हुए हैं पूछिए। प्रश्न में देरी करेंगे तो हमारा दोष नहीं होगा, पूछने वाले का दोष होगा।
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया 1-2 दिन से, तो मैं ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि ये जो द्विज पत्नीगण भगवान की कृपा प्राप्त किए, तो जैसे हम काली के नाग के पत्नी के बारे में भी सुनते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पति क्या सौभाग्य प्राप्त किए थे, क्या पुण्य किए थे कि भगवान के चरण को प्राप्त किए। तो उसी प्रकार से प्रश्न उठता है कि द्विज पत्नियों ने पूर्वजन्म में क्या स्वीकृति या पुण्य किए थे, जबकि उनकी पतियों ने भगवान को कृपा प्राप्त नहीं किए और पत्नियों ने इतने भगवान की कृपा मिला।
इतना तो स्पष्ट कथा हुई कि भगवान की वे कथा सुनती थी बारंबार पूर्णमासी जी के मुख से, और प्रत्यक्ष भगवान की सेवा किया। पूर्व जन्म की बात कोई सुखदेव गोस्वामी नहीं बोले हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता पूर्व जन्म में। इस जन्म में तो सब तरह से भक्ति कर रही हैं। कई स्थान पर कई चीजें नहीं ज्ञात रहती हैं। हम लोग किसी घर में जाते हैं रहने के लिए तो ज्यादा इंक्वायरी नहीं करते हैं कि नींव कैसे बना था, इसका फाउंडेशन हमको पता लगाना नहीं, केवल देख लेते हैं इसमें किचन है, बाथरूम है और ठीक। अब उसने खुदाई करवावे किसी से कि खुद नींव देखना चाहते हैं क्या, पूर्व जन्म का क्या भरोसा है, इस जन्म में जो कर रहे हैं वही करना है हमें। कथा सुननी चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए।
हरे कृष्ण। पूर्णमासी जी तो ब्रज में रहती थी और ये जग पत्नियां मथुरा में, फिर इनसे कैसे भेंट होता था और चर्चा होती थी?
वो टेम्पो से चली जाती हूँ। जाने में क्या दिक्कत, भगवान के योग माया का अवतार है पूर्णमासी जी, भगवान की लीलाओं में उनका बड़ा योग है, कैसे चल जाती क्या।
हरे कृष्ण महाराज जी, वेद में जो उपदेश है कि इसके द्वारा ही व्यक्ति भगवान को जान सकता है, क्योंकि वेदस्य सर्वे अहमेव भवति, लेकिन वेद पढ़ने के बाद लोग भगवान को क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं?
भक्ति नहीं करते हैं, वेद पढ़ने से क्या होगा, भक्ति करेंगे तब ना। वेद को शास्त्र को पढ़ना है भगवान की आज्ञा मान करके, लेकिन भगवान का मैं दास हूं, भगवान हमारे प्रभु हैं, वही सबके पालक हैं, इस प्रकार की भावना जब होगी, भक्ति भाव होगा, तब वेद पढ़े चाहे कोई शास्त्र पढ़े फायदा करता है, नहीं तो और उल्टा प्रभाव पड़ता है। कोई भी कार्य करे तो भक्ति पूर्वक करे, भक्ति से भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं, न कि वेद से। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त, भगवान अपनी भक्ति में प्राप्त है और वेद में दुर्लभ है।
क्या वेद में भक्ति का वर्णन नहीं है?
भक्ति का ही वर्णन है वेद में, लेकिन भक्ति रहेगी तभी वेद को समझेंगे ठीक से। भक्ति नहीं रहने पर वेद समझ में आता है। ऐसे वेद में भी भगवान है, सारे जगत में भी है, लेकिन जैसे भूमि में अनेक फल है, बीज अनाज है, लेकिन उसको उगाने के लिए कोई दूसरा अनाज जरूरी है। उसको भूमि में रोपते हैं तो वह कई अन्न को लेकर उत्पन्न होता है। भक्ति रहने पर तब वेद से चाहे लोक से कहीं से भगवान को पाया जाएगा। वेद से भी भक्ति उत्पन्न हो सकती है। कि वेद तो ये ब्राह्मण भी पढ़ रहे थे और वेदोक्त कर्म भी कर रहे थे, स्वाहा हाहा में लगे हुए थे, लेकिन भगवान मांगने आए, भगवान के पार्षद मांगने आए तो चुप, कोई आवाज ही नहीं निकली।
हरे कृष्णा महाराज, भगवान ने गोपियों को भी आदेश दिया था, पहले बुलाया फिर उनको कहा लौट जाओ, लेकिन गोपियों ने उनकी बात नहीं सुनी और वो अड़ी रही, डटी रही, भगवान की सेवा में ही लगी रही। लेकिन ये ब्राह्मण पत्नियां जो थी लौट गई, इनमें से किनकी श्रेष्ठता मानी जाएगी भक्ति में?
श्रेष्ठ तो सब प्रकार से गोपी जन है, लेकिन ये कनिष्ठ नहीं है। इसमें श्रेष्ठ और कनिष्ठ का प्रश्न नहीं है, उनकी स्थिति दूसरी थी गोपीजनों की, इनकी दूसरी है। वास्तव में श्री भगवान चाहते थे कि ये लौट जाएं और अपने पतियों को सहायता करें, और गोपीजनों को वे चाहते थे कि यहीं रहें, रासलीला की जाए। बातें ऐसी बोल रहे थे कि आप लौट जाइए, लेकिन वे लौटी नहीं। मैं भी भगवान के अभिप्राय को जानती थी, इसीलिए उसके बाद का जो उत्तर है उसके दो दो भावाचार्यों ने लिखा है, और भगवान के वाक्यों का अर्थ भी, भगवान के प्रत्येक भाव का श्लोक में अर्थ किया गया है। तुम मत जाओ, रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्य ने सेविता, ये घोर रात है, घोर जीव जंतु घूम रहे हैं इसमें, तुम स्त्री हो इसलिए यहां से चली जाओ, ये एक भाव है। दूसरा है कि ये रात घोर नहीं है, घोर जंतु नहीं घूम रहे हैं, तुम स्त्री हो अब कहां जाओगी, यह स्थिर तुम्हें यहीं रहना चाहिए, ये भी अर्थ किया गया है। कई दो सभी श्लोकों का अर्थ एक अनुकूल एक प्रतिकूल किया गया है। तो भगवान चाहते थे और भगवान ने उनसे केवल भोजन भर नहीं मांगा था, बांसुरी में नाम ले लेकर के बुलाया था। जहां तक भाव की बात है, गोपीजनों की भाव तो प्रकाष्ठा पर है, ब्राह्मण पत्नियों में वो ऐसा भाव डेवलप नहीं है। भाव है, ये भी उज्ज्वल भावमयी है, श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी, लेकिन ब्राह्मण में जन्म हुआ था, ब्राह्मणों की सब पत्नियां थी, तो भगवान उनके साथ गोपियों जैसा भाव का प्रतिपादन नहीं, गोपियों जैसे भाव को स्वीकार नहीं कर सकते थे। पर ऐसे ये नहीं माना जाएगा कि इनका भाव कमजोर था। गोपियों के समान इन्होंने भी अपने स्वजनों का त्याग किया था, कर्म का त्याग किया था, लेकिन श्री कृष्ण चाहते थे कि ये लौट जाएं, चाहे लोक मर्यादा देकर जैसे तैसे, तो लौट जाना ही उचित था। श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही करना था। भगवान इनके भाव की भूरी भूरी प्रशंसा किए हैं, पर हम लोगों की बुद्धि ऐसे हमेशा, हम लोग छोटा बड़ा का हिसाब देखना चाहते हैं, किसका भाव ऊंचा है किसका छोटा है, पूर्ण धरातल पर है। जग पत्नियों का प्रेम अपने आप में पूर्ण है, और ब्रजांगनाओं का तो कहना ही नहीं, उनका तो सब कुछ है।
धन्यवाद।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपने जैसे बताया कि जब भक्ति करते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं, तो जैसे कि हम आपका जीवन भी देखते हैं कि आपके जीवन में भी इतना मतलब ट्रबल्स आया है और फिर भी आप स्ट्रांगली, तो हमारे जीवन में क्या होता है कि हम जब हम ऐसा दिक्कत आता है तो लगता है कि हम भक्ति नहीं कर पाएंगे या बहुत उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो क्या किया जाना चाहिए और कैसे इसको समझा जाए कि ये भगवान हमें हेल्प करने के लिए कर रहे हैं।
भगवान के स्वभाव को जानना चाहिए। भगवान कृपामय है, तो कृपामय किसी खास महीने में या वर्ष में नहीं है, सदा कृपामय है। जो कुछ करते हैं अपने भक्त के लिए तो कृपा का ही एक फेज होता है। देखने में लगे तो कृष्ण बहुत भारी विपत्ति में डाल दिए, लेकिन उसमें भी उनकी कृपा का हाथ रहता है। जो कुछ जिस परिस्थिति में डालें वे कृपामय है। बलि महाराज ने इस बात को कहा है, संपूर्ण तीनों जगत छीन करके और इंद्र को दे देना बलि महाराज जी के लिए बड़ा फजीहत की बात थी। उनको बांधा भी गया, दुर्वचन भी बोला गया, भगवान ने स्वयं कहा, लेकिन बलि महाराज थोड़ा भी घबराए नहीं। वे जानते थे कि भगवान कृपा कर रहे हैं। यहां तक कहे कि जो दंड माता पिता नहीं दे सकते, गुरु नहीं दे सकते, वो दंड आप देते हैं हित करने के लिए। तो श्री प्रहलाद महाराज आए तो वे भी बलि महाराज की बात का अनुमोदन किए, तो ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी लगे भगवान से बोलने की, आपको कोई दुर्वांकुर चढ़ा देता है, तुलसी का पत्ता दे देता है, तो आप तीनों लोक का दान कर देते हैं, और इसने तो तीनों लोक आपके चरणों में दिए, उसको आप बांधे हैं, खोलिए खोलिए जल्दी खोलिए। वो भी नहीं समझ पाए। तब भगवान कहते हैं, ब्राह्मण मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूं, जब धन छीन लेता हूं तो उसके स्वजन भी उसकी उपेक्षा करते हैं, जब स्वजन उपेक्षा करते हैं तब उसके मन में आता है कि हे कृष्ण अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से मैं इस पर कृपा किया हूं और अगले मनमंत्र में यह इंद्र बनेगा, भगवान कह रहे थे। बाहर से समझ में आता है ये निग्रह कर रहे हैं, लेकिन वो अनुग्रह होता है। इन सब बातों से धैर्य रखना चाहिए कि भगवान कभी कठोर हो ही नहीं सकते। करोड़ों करोड़ों माता पिता से भी अधिक स्नेह उनके हृदय में होता है जीव के प्रति, और उसमें भी कोई भक्त है तब तो उसके प्रति और स्नेह होता है। भले वे ऐसा काम करें जिसे देखने में लगे कि अरे कि ये कृपा नहीं है, लेकिन वो तो कृपा ही है। भगवान की लीलाएं पढ़ करके सुन करके भगवान के स्वभाव को हृदय में धारण कर लेना चाहिए। जैसे माँ है, माँ अपने बच्चे को धमकावे दिखावे छुरी दिखावे, गले पर छुरी मारूंगी काट दूंगी काट दूंगी, लेकिन बच्चा हंसता है, छोटा बच्चा भी, उसको विश्वास रहता है कि मारेगी नहीं, है ना? तो ऐसा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि अब कृष्ण कब मदद करेंगे, तो हाथ धो गए हाथ धो गए। नहीं, जैसे द्रौपदी जी की मदद किए, गजराज की, तो करते ही हैं, वो थोड़ा देर से करते हैं, उनका स्वभाव है, वो चाहते हैं कि ये रोवे, रुला देते हैं, लेकिन करते हैं निश्चित सहायता, हरेक समय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।